संयुक्त राष्ट्र रेडियो के साप्ताहिक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं सचिन गौड़। 17 दिसंबर 2021 के इस अंक में सुनिए, कोविड-19 महामारी को वैश्विक समन्वित कार्रवाई के बिना नहीं हराया जा सकता, यूएन महासचिव का संदेश। विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी, कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट दे चुका है दुनिया के अधिकांश देशों में दस्तक। वायरस को हल्का मान लेने की लापरवाही साबित हो सकती है एक बड़ी गलती। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भुखमरी से पीड़ितों की संख्या में 5 करोड़ की वृद्धि। विश्व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं प्रवासी कामगार। और आर्कटिक क्षेत्र में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की पुष्टि। आपको याद दिलाते चलें कि खबरों को विस्तार से पढ़ने और खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने गुरुवार को इस वर्ष के लिए अपनी अंतिम पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पुरजोर ढंग से कहा कि दुनिया कोविड-19 महामारी को एकजुटता और ठोस तालमेल के बिना नहीं हरा सकती है, इसलिए देशों को साल के अंत तक पूरी दुनिया में लगभग 40% आबादी का टीकाकरण करने के लिए आने वाले दिनों में ठोस कार्रवाई करनी होगी। ज्यादा जानकारी के साथ यूएन न्यूज हिंदी के प्रमुख महबूब खान।
यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने न्यूयॉर्क में पत्रकारों से बातचीत में वर्ष 2022 के मध्य तक दुनिया भर की 70% आबादी का टीकाकरण किए जाने की खातिर सदस्य देशों से और ज्यादा महत्वाकांक्षा दिखाने का भी आह्वान किया है। ये वर्ष समाप्त होने में कुछ ही दिन बाकी बचे हैं, जबकि 98 देशों में 40% आबादी का टीकाकरण करने का लक्ष्य हासिल नहीं किया गया है। 40 देशों में तो अभी तक 10% आबादी का भी टीकाकरण नहीं हो सका है। निम्न आय वाले देशों में केवल 4% आबादी को ही टीके लग सके हैं। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश का कहना था,
So vaccine inequity is giving variants a free pass to run wild, ravaging the health of people and economies in every corner of the globe.
महासचिव एंटोनियो गुटेरेश कह रहे थे कि वैक्सीन विषमता के कारण कोरोना वायरस के वेरिएंट्स को अपनी तबाही मचाने के लिए खुली छूट मिली हुई है, जो दुनिया भर में लोगों के स्वास्थ्य से खेल रहे हैं और आर्थिक तबाही मचा रहे हैं। हम इस महामारी को समन्वित रास्ते के बिना मात नहीं दे सकते। मैं बहुत चिंतित हूँ, अगर परिस्थितियाँ बहुत तेजी से बेहतर नहीं हुई तो हम और भी ज्यादा कठिन दौर का सामना करने वाले हैं। महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने इस वर्ष की अपनी अंतिम प्रेस वार्ता में कहा कि दुनिया एक बहुत कठिन वर्ष को जाते हुए देख रही है। इस वर्ष में भी महामारी ने तबाही मचाना जारी रखा, विषमताएं बढ़नी जारी रहीं, विकासशील देशों का बोझ भारी हुआ और जलवायु संकट अनसुलझा ही रहा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने भी न्यूयॉर्क में पत्रकारों को संबोधित करते हुए दोहराया कि कोविड-19 महामारी से बाहर आने का एकमात्र रास्ता सर्वत्र सर्वजन के लिए टीकाकरण सुनिश्चित करना है। यूएन महासभा अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने जनरल असेंबली में 13 जनवरी को एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य हर व्यक्ति के लिए हर स्थान पर कोविड-19 वैक्सीन की न्यायसंगत सुलभता और वितरण जल्द से जल्द सुनिश्चित करना है।
संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने आगाह किया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट शायद अब दुनिया के अधिकतर देशों में मौजूद है और इसे हल्का मानकर खारिज कर देना एक भारी गलती होगी। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडहेनम गेब्रियसिस ने इस हफ्ते जिनीवा में संवाददाताओं से कहा कि ये वेरिएंट अब 70 से ज्यादा देशों में मौजूद है।
77 countries have now reported cases of Omicron and the reality is that Omicron is probably in most countries even if it hasn't been detected yet.
महानिदेशक गेब्रियसिस कह रहे थे कि 77 देशों में ओमिक्रॉन के मामलों की पुष्टि हो चुकी है और सच्चाई ये है कि ये शायद हर देश में मौजूद है, भले ही इसका पता न चल पाया हो। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन जिस गति से फैल रहा है वैसा हमने पिछले किसी वेरिएंट के साथ नहीं देखा है। हम चिंतित हैं कि लोग ओमिक्रॉन को हल्के में ले रहे हैं। निश्चित रूप से हमने अब तक जान लिया है कि इस वायरस को कम करके आंकना बहुत बड़ा जोखिम होगा। यूएन एजेंसी प्रमुख ने संक्रमण मामले बढ़ने की स्थिति में स्वास्थ्य प्रणालियों पर बोझ बढ़ने के प्रति आगाह किया। स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कुछ देशों में ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए वैक्सीन का बूस्टर शॉट या अतिरिक्त खुराक देने का सिलसिला शुरू हो गया है, जबकि अभी इसके कोई सबूत नहीं है कि वे असरदार रहेंगे। इस तरह के कार्यक्रमों से कोविड 19 वैक्सीन की जमाखोरी बढ़ने और असमानताएं गहराने की आशंका जताई गई है।
लेट मी बी वेरी क्लियर, WHO इज नॉट अगेंस्ट बूस्टर्स, वी आर अगेंस्ट इनइक्विटी, आवर मेन कंसर्न इज टू सेव लाइव्स एवरीवेयर।
महानिदेशक गेब्रेयेसस कह रहे थे कि हम बूस्टर टीके के खिलाफ नहीं हैं, हम विषमताओं के खिलाफ हैं। हमारा प्रमुख उद्देश्य सभी जगहों पर लोगों की जान बचाना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन की एक नई रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में वैश्विक श्रम बल में प्रवासियों की संख्या में 3 गुना वृद्धि हुई है। प्रवासी कामगार विश्व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और अनेक देशों में उनकी मांग बढ़ रही है। कोविड 19 महामारी के दौरान अति आवश्यक सेवाओं में प्रवासी कामगारों की अहम भूमिका नजर आई। प्रतिष्ठा जैन की रिपोर्ट।
विश्व भर में प्रवासी कामगारों की संख्या करीब 17 करोड़ है, जबकि 2010 में विदेशी कामगारों की संख्या 5 करोड़ 30 लाख थी, यानी इस आंकड़े में 3 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। प्रवासी कामगारों की श्रम बल में भूमिका बढ़ रही है और वे अब वैश्विक कार्यबल का लगभग 5% है। 2010 में यह आंकड़ा 2% से भी कम था। रिपोर्ट बताती है कि प्रवासी कामगार अनेक निम्न और मध्य आय वाले देशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रवासियों द्वारा घर भेजे जाने वाली रकम ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशों से प्राप्त होने वाली विकास सहायता राशि को पीछे छोड़ दिया है। प्रवासी कामगारों के लिए मांग भी बढ़ रही है। कोविड 19 महामारी के दौरान अति आवश्यक सेवाओं की अनेक भूमिकाओं में प्रवासी कामगार नजर आए। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के आंकड़े दर्शाते हैं कि ब्रिटेन में चिकित्सकों की कुल संख्या का 33% विदेशी डॉक्टर है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली समेत अन्य उच्च आय वाले देशों में भी विदेशी स्वास्थ्य कर्मियों पर निर्भरता बढ़ रही है।
एशिया व प्रशांत क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति बद से बदतर हुई है और पिछले साल 37 करोड़ से अधिक लोग भुखमरी का सामना कर रहे थे। खाद्य एवं कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की एक साझा रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में भूख से पीड़ितों की संख्या में पिछले साल 5 करोड़ 40 लाख की वृद्धि हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
यूएन एजेंसियों का कहना है कि भुखमरी बढ़ने के साथ साथ पोषक आहार की सुलभता भी प्रभावित हुई है। 2021 एशिया एंड द पैसिफिक रीजनल ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन नामक की रिपोर्ट बताती है कि इस क्षेत्र में 1 अरब से अधिक लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन सुलभ नहीं था। 1 वर्ष के भीतर ही इस समस्या से जूझने वाले लोगों में करीब 15 करोड़ की वृद्धि हुई है। स्वस्थ व पोषक आहार की ऊंची कीमतें, बड़े पैमाने पर निर्धनता और आय विषमता के कारण एशिया प्रशांत क्षेत्र में 1 अरब 80 करोड़ लोगों के लिए सेहतमंद आहार उनकी पहुंच से दूर बना हुआ है। वैश्विक महामारी कोविड 19 के कारण खाद्य व पोषण सुरक्षा को हुई क्षति का पूर्ण रूप से आकलन कर पाना कठिन है, लेकिन कोरोना वायरस संकट ने क्षेत्र को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। बेहतर पुनर्बहाली सुनिश्चित करने के लिए संकल्प लिए गए हैं और कृषि खाद्य प्रणालियों की कायापलट कर देने वाले उपायों के जरिए खाद्य व पोषण सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अवसर भी उपलब्ध हैं। 2030 एजेंडा के तहत टिकाऊ विकास के दूसरे लक्ष्य खाद्य असुरक्षा व कुपोषण का उन्मूलन, इसे हासिल करने के लिए ये संकल्प लागू किए जाने की आवश्यकता होगी।
संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने आर्कटिक क्षेत्र में 38 डिग्री सेल्सियस यानी करीब 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान दर्ज किए जाने की पुष्टि की है, जो कि एक नया आर्कटिक रिकॉर्ड है। ये तापमान पिछले साल जून में साइबेरिया के वर्होयांस्क नगर में दर्ज किया गया था। मौसम विज्ञान एजेंसी का कहना है कि ऐसा तापमान आर्कटिक के बजाय आमतौर पर भूमध्य सागर क्षेत्र में देखा जाना आम बात है। यूएन एजेंसी के मुताबिक आर्कटिक साइबेरिया में पिछले साल गर्मियों के दौरान औसत से 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। साइबेरिया में अभूतपूर्व लंबी अवधि तक चलने वाली ताप लहरें दर्ज की गई, जिनके कारण व्यापक स्तर पर आग लगने की घटनाएं हुई। साथ ही आर्कटिक सागर में गर्मी का मौसम समाप्त होने से ठीक पहले विशाल मात्रा में जमे हुए पानी का नुकसान हुआ। गर्म भट्टी जैसी इन परिस्थितियों की वजह से पिछले साल को अब तक के 3 सर्वाधिक गर्म वर्षों में दर्ज किया गया है। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।